एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्ते, आज हम एक बहुत ही खास क्लासिक कृति पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी किताब जिसने पश्चिमी विचार को गहराई से प्रभावित किया है, प्लेटो की अपोलॉजी।
हाँ, अपोलॉजी ये वो मशहूर दस्तावेज है जिसमें प्लेटो अपने गुरु सुकरात के उस ऐतिहासिक मुकदमे का जिक्र करते हैं।
बिल्कुल, और ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक ऐसा टेक्स्ट है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।
सही कहा।
चाहे वो सत्य और ईमानदारी की बात हो, या समाज के जो नियम हैं उनको चुनौती देने का साहस हो,
हाँ,
या फिर वो जो अपनी अंतरात्मा की आवाज है और राज्य का जो अधिकार है उसके बीच का तनाव, ये सारे सवाल इसमें आज भी जिंदा हैं।
इका उसका रोल क्या है, खासकर तब जब वो स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाता है।
बिल्कुल, और उनकी वो जो सबसे मशहूर बात है, बिना परखा जीवन जीने लायक नहीं है।
हाँ, वो तो गजब है।
आज की दुनिया में जहाँ इतनी भागदौड़ है, इतनी सूचनाएं हैं चारों तरफ, ये बात कितनी सटीक लगती है।
जानकारी तो बहुत है, पर क्या हम सच में रुककर सोचते हैं, अपने विश्वासों को, अपने मूल्यों को परखते हैं?
यही सुकरात का जीवन हमें इसी आत्ममंथन के लिए उकसाता है। उनकी भूमिका सिर्फ सवाल पूछना नहीं थी, उनका एक बड़ा लक्ष्य था समाज को नैतिक रूप से जगाना।
बिल्कुल, तो चलिए पहले बात करते हैं इस किताब के लेखक की, प्लेटो की।
प्लेटो, जिन्हें भारत में हम अफलातून के नाम से भी जानते हैं, लगभग 428 ईसा पूर्व से 348 ईसा पूर्व तक एथेंस में, इतिहास के सबसे प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक, और हाँ, सुकरात के सबसे करीबी, सबसे समर्पित शिष्य।
जी, और ये बात अहम है कि सुकरात ने खुद तो कुछ लिखा नहीं, उनके जो विचार हैं वो हम तक ज्यादातर प्लेटो के डायलॉग्स, उनके संवादों से ही पहुंचे हैं।
सही, और प्लेटो की अपनी जिंदगी भी काफी घटनाओं भरी रही।
हाँ, वो एथेंस के एक जाने माने संभ्रांत परिवार में जन्मे थे। उन्होंने वो पेलोपोनेशियन युद्ध की तबाही देखी, शहर में जो राजनीतिक उथल पुथल मची थी वो सब करीब से देखा।
लेकिन कहते हैं कि उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 399 ईसा पूर्व में उनके गुरु सुकरात पर मुकदमा चला और उन्हें मौत की सजा दे दी गई।
हाँ, उस घटना ने प्लेटो को अंदर तक हिला दिया, उनका राजनीति से जैसे मोह भंग सा हो गया और वो पूरी तरह दर्शन की तरफ मुड़ गए।
उनका तो मानना था कि समाज की समस्याएं तभी सुलझेंगी जब या तो दार्शनिक राजा बने या राजा लोग दार्शनिक बन जाएं।
और इसी वजह से प्लेटो अपोलॉजी लिखने के लिए शायद सबसे सही व्यक्ति थे।
क्यों? एक तो जैसा कुछ जगहों पर जिक्र मिलता है, वो खुद उस मुकदमे में मौजूद थे, प्रत्यक्षदर्शी थे।
अच्छा।
दूसरा, उन्हें सुकरात के दर्शन की, उनकी जो तर्क करने की पद्धति थी, उनकी सोच की बहुत गहरी समझ थी।
और उन्होंने ही एथेंस में वो मशहूर एकेडमी भी शुरू की थी, जिसे हम पश्चिमी दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कह सकते हैं।
हाँ, और अपोलॉजी लिखते हुए उनका इरादा सिर्फ घटना दर्ज करना नहीं था, उनका असल मकसद था सुकरात के चरित्र को सही साबित करना, उनके दार्शनिक मिशन को, उनकी भूमिका को सही रोशनी में दिखाना और उनकी विरासत को सम्मान देना।
बिल्कुल, प्लेटो की कलम का ही कमाल है कि एक अदालती कार्यवाही जो है वो सत्य और समाज के बीच के संघर्ष की एक टाइमलेस कहानी बन गई।
और ये कहानी है अपोलॉजी। वैसे ये नाम थोड़ा क्या कहते हैं, कंफ्यूजिंग हो सकता है ना?
हाँ, क्योंकि आज तो अपोलॉजी माफी मांगना होता है,
पर यहाँ वो नहीं है। ये ग्रीक शब्द अपोलोजिया से आया है,
जिसका होता है अपना पक्ष रखना, अपना बचाव करना, वो भी औपचारिक तौर पर, कानूनी तौर पर।
तो ये सुकरात की माफी नहीं है, ये उनका एक बहुत दमदार सिद्धांतों पर टिका हुआ बचाव है।
हाँ, ये किताब असल में सुकरात का अपने पूरे जीवन के पक्ष में दिया गया तर्क है। एक ऐसा जीवन जो उन्होंने सत्य, सदाचार और लगातार खुद को जांचने परखने में लगाया था।
और इसमें जो बुनियादी सवाल उठता है वो ये है कि भाई, ऐसा जीवन जिसमें आप लगातार सवाल पूछ रहे हैं, नैतिक पड़ताल कर रहे हैं, उसकी आखिर कीमत क्या है, उसका मूल्य क्या है?
और क्यों ऐसे जीवन को बचाने के लिए जान भी देनी पड़े तो देनी चाहिए।
सुकरात के लिए ये सिर्फ कोई निजी पसंद की बात नहीं थी, ये उनका कर्तव्य था, समाज के प्रति उनकी भूमिका, उनका एक तरह का रोल था।
तो औपचारिक आरोप क्या थे सुकरात पर?
दो मुख्य आरोप थे। पहला, कि वो एथेंस के युवाओं को बिगाड़ रहे हैं, उन्हें भ्रष्ट कर रहे हैं।
और दूसरा?
दूसरा था अधर्म का, मतलब शहर जिन देवताओं को मानता है सुकरात उन्हें नहीं मानते और अपने कोई नए देवता गढ़ रहे हैं।
अच्छा, ये नए देवता वाली बात शायद उनकी उस अंदर की आवाज या डिमोनियन के बारे में थी।
हाँ, लगता तो यही है। वो कहते थे ना कि एक आवाज है जो उन्हें गलत काम करने से रोकती है।
और सुकरात का जवाब क्या था इन आरोपों पर?
एकदम साफ। वो कहते थे कि भाई मेरा दर्शन, मेरा ये सवाल पूछने का तरीका, ये कोई जुर्म नहीं है, ये तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, एक तरह से ईश्वर का आदेश है।
मतलब वो अदालत से कोई दया की भीख नहीं मांग रहे थे?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो अपनी नैतिक स्थिति की, अपनी सुपीरियोरिटी का दावा कर रहे थे।
ये किताब असल में सुकरात के वो तीन भाषण हैं जो उन्होंने मुकदमे के टाइम पे 501 एथेनियन नागरिकों की जूरी के सामने दिए थे।
हाँ, और ये हमें सुकरात की जिंदगी के उन आखिरी सबसे अहम घंटों की एक बौद्धिक और भावनात्मक यात्रा पर ले जाती है। ज्ञान, न्याय, साहस, मौत, कितने बड़े बड़े सवालों से सामना होता है।
ये सिर्फ बचाव नहीं है, ये तो जैसे सुकरात के जीवन के उद्देश्य, समाज में उनकी भूमिका का एक घोषणा पत्र जैसा लगता है।
तो फिर चलें इन भाषणों को थोड़ा और करीब से देखें।
पहला भाषण, जो फैसले से पहले उनका मुख्य बचाव था।
हाँ, बताइए।
सुकरात शुरू में ही कहते हैं कि देखो भाई, मैं कोई चिकनी चुपड़ी बातें या चालाकी भरे तर्क इस्तेमाल नहीं करूंगा जैसे वो पेशेवर वक्ता करते हैं।
अच्छा।
मैं तो बस सीधी सरल सच्चाई बोलूंगा, वैसे ही जैसे मैं हमेशा बाजार में, सड़क पर लोगों से बात करता हूँ। उनका जोर सच बताने पर था, प्रभावित करने पर नहीं।
और फिर वो एक बहुत दिलचस्प बात कहते हैं।
कौन सी?
वो कहते हैं कि असली खतरा उन लोगों से नहीं है जिन्होंने अभी औपचारिक आरोप लगाए हैं, मिलिटस, एनेटस, लाइकॉन।
तो फिर किससे है
खतरा? उन पुराने आरोपकर्ताओं से है जिन्होंने सालों से उनके बारे में गलत बातें, अफवाहें फैलाई हैं।
जैसे?
जैसे ये कि सुकरात कोई प्रकृति विज्ञानी है जो हवा पानी की बातें करता है, या वो एक सोफिस्ट है जो पैसे लेकर बहस करना सिखाता है, सही को गलत साबित कर देता है।
अच्छा, मतलब पुरानी अफवाहें। वो कहते हैं कि इन पुरानी बातों ने लोगों के मन में पहले से मेरे खिलाफ एक पूर्वाग्रह बना दिया है।
और इसी सफाई के दौरान वो डेल्फी के ओरेकल, वो देववाणी वाली कहानी सुनाते हैं।
हाँ, वो मशहूर कहानी उनके दोस्त चेरिफोन की।
हाँ, चेरिफोन डेल्फी मंदिर गए और वहां पुजारिन से पूछा, क्या दुनिया में सुकरात से ज्यादा बुद्धिमान कोई है? जवाब मिला, नहीं।
और सुकरात ये सुनकर हैरान रह गए।
बिल्कुल, कहते हैं मैं तो खुद को अज्ञानी समझता हूँ। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए उन्होंने अपना वो मिशन शुरू किया, ऐसे लोगों को ढूंढना जो सच में बुद्धिमान हो, ताकि वो देववाणी को गलत साबित कर सकें।
और इस खोज में वो शहर के उन सब लोगों के पास गए जिन्हें ज्ञानी माना जाता था।
राजनेताओं से मिले।
हाँ, जो सोचते थे कि हम बड़े ज्ञानी हैं, पर सुकरात को लगा कि ये तो कुछ नहीं जानते।
कवियों के पास गए जिन्होंने कमाल की कविताएं लिखी थी, पर वो अपनी कविताओं का मतलब खुद ही नहीं समझ पाते थे।
लगता था जैसे बस किसी प्रेरणा से लिख दिया हो, समझ से नहीं।
फिर करियरों से मिले। वो अपने काम में तो माहिर थे, पर इसी वजह से वो जिंदगी के दूसरे बड़े मसलों पर भी खुद को ज्ञानी समझने लगे थे।
तो इस सब का नतीजा क्या निकला? सुकरात किस नतीजे पर पहुंचे?
वो इस नतीजे पर पहुंचे कि देववाणी शायद सही थी, पर एक अलग तरह से। उनकी बुद्धिमत्ता किसी खास ज्ञान में नहीं थी, बल्कि ये जानने में थी कि वो नहीं जानते हैं।
और यहीं से उनका वो मशहूर कथन आया, मैं इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता।
हाँ, ये बौद्धिक विनम्रता, अपनी अज्ञानता को जानना, यही उनकी असली समझ थी।
और यहीं पर वो डांस या गटफ्लाई वाला रूपक भी आता है।
हाँ, वो बड़ा शक्तिशाली रूपक है।
सुकरात अपनी तुलना एक ऐसी भिनभिनाने वाली मक्खी से करते हैं जिसे देवता ने एथेंस रूपी एक बड़े तगड़े पर कुछ आलसी हो चुके घोड़े के साथ लगा दिया है।
और मक्खी का काम क्या है?
घोड़े को लगातार कोंचते रहना, उसे जगाए रखना। उसे जो आत्मसंतुष्टि की नींद आ गई है, उसे झिझोड़कर सदाचार के रास्ते पर लाना।
मतलब वो अपने सवार जवाब को समाज की बुराई नहीं, बल्कि समाज के लिए एक जरूरी सेवा मानते थे।
बिल्कुल, ये ईश्वर ने उन्हें सौंपा था, ये उनकी भूमिका थी, उनका लक्ष्य था एथेंस को बेहतर बनाना।
इसके बाद वो सीधे अपने मुख्य आरोपकर्ता मिलिटस से जिरा करते हैं।
हाँ, युवाओं को बिगाड़ने वाले आरोप पर।
वो तर्क देते हैं, एक कितनी अजीब बात है कि पूरे एथेंस में सिर्फ मैं अकेला युवाओं को बिगाड़ रहा हूँ और बाकी सब उन्हें सुधार रहे हैं। और कहते हैं, अगर मुझसे अनजाने में कोई गलती हुई भी है तो उसके लिए सजा क्यों? मुझे सिखाना चाहिए था, शिक्षा देनी चाहिए थी।
और वो जो अधर्म वाला आरोप था,
उस पर तो वो मिलिटस को उसी के शब्दों में फंसा देते हैं। मिलिटस एक तरफ कहता है कि सुकरात नास्तिक हैं, ईश्वर को नहीं मानते।
हाँ।
दूसरी तरफ आरोप पत्र में लिखा है कि वो नए देवीय मामले या डेमोनिया ला रहे हैं।
तो सुकरात पूछते हैं, भाई ये कैसे हो सकता है?
हाँ, कि कोई पूरी तरह नास्तिक होते हुए भी दैवीय शक्तियों में कैसे मान सकता है, ये तो विरोधाभास है।
लेकिन सबसे अहम बात शायद ये है कि सुकरात किसी भी कीमत पर समझौता करने को तैयार नहीं दिखते।
बिल्कुल नहीं, वो साफ कहते हैं कि अगर जूरी इन्हें इस शर्त पर छोड़ना चाहे कि भाई अब तुम सवाल पूछना बंद कर दो, दर्शन पर बात करना बंद कर दो, तो वो ऐसा कभी नहीं करेंगे।
उनका वो वाक्य बहुत मशहूर है,
एथेंस वासियों, मैं आपका आदर करता हूँ और आपसे स्नेह रखता हूँ, पर मैं आपकी आज्ञा मानने की बजाय ईश्वर की आज्ञा मानूंगा।
यहाँ उनका लक्ष्य और उनकी भूमिका एकदम साफ हो जाती है।
हाँ, और वो अपने परिवार को लाकर जूरी से दया की भीख मांगने जैसी जो तरकीबें होती थी उन्हें भी नकार देते हैं। कहते हैं ये न्याय की गरिमा के खिलाफ है।
पर जूरी इन बातों से पूरी तरह सहमत नहीं हुई।
नहीं, सुकरात को दोषी पाया गया। हालांकि मार्जिन बहुत कम था, 280 वोट दोषी ठहराने के पक्ष में, 221 विरोध में।
अब शुरू हुआ दूसरा भाषण, सजा पर बहस। प्रोसिक्यूशन ने मौत की सजा मांगी। उन्होंने
कहते हैं कि मैंने तो जिंदगी भर एथेंस की भलाई की है, लोगों को सदाचार के लिए जगाया है, तुम मुझे सजा क्यों? मुझे तो इनाम मिलना चाहिए।
इनाम? क्या इनाम?
शहर के खर्चे पर प्राइटेनियम में मुफ्त भोजन। ये वो सम्मान था जो ओलंपिक विजेताओं को मिलता था।
अरे वाह, ये तो एक तरह से अपनी भूमिका का ऐलान था उनकी नजर में।
हाँ, पर जाहिर है जूरी को ये बात शायद अच्छी नहीं लगी होगी।
फिर वो दूसरी सजाओं पर भी सोचते हैं। जेल, कहते हैं वो तो गुलामी जैसा है। जुर्माना,
कहते हैं मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से दूंगा। हालांकि उनके दोस्त प्लेटो भी उनमें थे, जुर्माना भरने को तैयार थे, और वो अनिच्छा से एक छोटा जुर्माना प्रस्तावित भी करते हैं।
फिर निर्वासन का विकल्प, देश निकाला, वो शायद सबसे आसान रास्ता होता।
पर सुकरात उसे भी ठुकरा देते हैं। कहते हैं मैं जहां भी जाऊंगा वहां भी सवाल पूछूंगा और लोग वहां भी नाराज होंगे।
और चुपचाप बैठ जाना,
वो तो उनके मिशन के, उनके जीवन के लक्ष्य के, उनकी भूमिका के ही खिलाफ होता।
और यहीं पर इसी बातचीत के दौरान वो अपना वो अमर वाक्य कहते हैं,
हो दे अनिक्सितास्तुस व्योस उ व्योत संथ्रोपो, यानी बिना परखा जीवन इंसान के जीने लायक नहीं है।
जिस जीवन में हम अपने विश्वासों, अपने कामों, अपने होने के मतलब पर सवाल नहीं उठाते, वो जीवन जीने लायक ही नहीं है। ये उनके जीवन की लक्ष्य का, उनकी भूमिका का सार है।
जूरी शायद सुकरात के इस रवैये से और भी चिढ़ गई।
लगता तो यही है, क्योंकि अब जब दोबारा वोटिंग हुई तो मौत की सजा का फैसला कहीं बड़े अंतर से हुआ, लगभग 360 वोट पक्ष में, 141 विपक्ष में।
इसके बाद सुकरात अपना तीसरा और आखिरी भाषण देते हैं।
पहले वो उन लोगों से बात करते हैं जिन्होंने उन्हें मौत की सजा दी है।
हाँ, वो कहते हैं कि मुझे मारकर तुमने अपना ज्यादा नुकसान किया है, मेरा कम।
क्यों?
क्योंकि अब मेरी जगह दूसरे और शायद मुझसे भी ज्यादा तीखे सवाल पूछने वाले युवा खड़े होंगे। तुम आलोचना को चुप कराने की कोशिश कर रहे हो जबकि तुम्हें खुद को बेहतर बनाना चाहिए था।
और वो एक और गहरी बात कहते हैं,
मौत से बचना उतना मुश्किल नहीं है दोस्तों जितना मुश्किल अन्याय से बचना है, क्योंकि अन्याय मौत से भी ज्यादा तेज दौड़ता है।
फिर वो उन जूरी सदस्यों की तरफ मुड़ते हैं जिन्होंने उन्हें बरी करने के लिए वोट दिया था, मतलब अपने समर्थकों की तरफ।
हाँ, उन्हें दिलासा देते हैं और एक दिलचस्प बात बताते हैं कि पूरे मुकदमे के दौरान उनकी वो अंदर की आवाज, उनका डिमोनियन जो उन्हें हमेशा गलत रास्ते पर जाने से रोकता था, इस बार एक बार भी नहीं बोला।
तो सुकरात के लिए इसका मतलब क्या था?
उनके लिए इसका मतलब साफ था कि जो हो रहा है, यानी उनकी मौत, वो कोई बुरी चीज नहीं है।
और फिर वो मौत की प्रकृति पर सोचते हैं।
हाँ, कि मौत क्या हो सकती है? शायद दो में से एक चीज। पहली, ये एक गहरी बिना सपनों वाली नींद जैसी हो सकती है। अगर ऐसा है तो ये तो बढ़िया है, परम आराम।
और दूसरी संभावना?
दूसरी ये कि मौत आत्मा का इस दुनिया से किसी दूसरी दुनिया में जाना है, और अगर पुरानी कहानियां सच हैं तो वहां उन्हें इतिहास के महान नायकों, कवियों, विचारकों से मिलने का मौका मिलेगा, होमर, ओडिसियस, हेसियड जैसे लोगों से,
और वहां भी वो उनसे अपना पसंदीदा काम,
हाँ, सवाल जवाब जारी रख सकेंगे। ये तो उनके लिए एक वरदान जैसा होगा, उनकी भूमिका का जैसे विस्तार हो गया।
अंत में वो अपना वो गहरा विश्वास दोहराते हैं,
एक अच्छे इंसान के साथ ना तो जीवन में और ना ही मृत्यु के बाद कुछ बुरा हो सकता है।
उनके आखिरी शब्द कितने शांत, कितने गरिमामय हैं।
हाँ,
अच्छा अब चलने का समय आ गया है, मैं मरने के लिए और तुम सब जीने के लिए, हम में से किसके हिस्से बेहतर भविष्य है ये तो केवल ईश्वर ही जानता है। क्या कहानी है और कितने सारे विचार है इसमें। अगर हम इसके मुख्य विषयों या संदेशों को थोड़ा समेटें तो क्या निकल कर आता है?
मेरे ख्याल में सबसे पहली बात तो वही है, ज्ञान की प्रकृति और बौद्धिक विनम्रता। ये मानना कि मैं नहीं जानता, ये आज की दुनिया में कितना जरूरी लगता है जहां हर कोई एक्सपर्ट है।
हाँ, हर कोई सबको जानता है।
सुकरात दिखाते हैं कि असली ज्ञान अपनी सीमाओं को पहचानने से शुरू होता है।
बिल्कुल।
और दूसरा कि दर्शन सिर्फ कोई दिमागी कसरत नहीं है, ये एक नैतिक जरूरत है, वो बिना परखा जीवन वाली बात।
जरा सोचिए, हमारे आसपास कितने ही लोग, या शायद हम खुद भी, कई बार जिंदगी के बड़े फैसले, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो, सामाजिक मान्यताएं हो, बिना गहराई से सोचे समझे बस करते चले जाते हैं।
सुकरात हमें चुनौती देते हैं कि अपनी मान्यताओं पर क्यों पूछो, ये अपनी भूमिका को गंभीरता से लेना है।
तीसरा मुद्दा, वो व्यक्तिगत अंतरात्मा बनाम राज्य या समाज का दबाव।
हाँ, जब आपकी अंदर की आवाज और बाहर की दुनिया की मांगों में टकराव हो तो क्या करें। सुकरात का जीवन दिखाता है कि नैतिक सिद्धांतों पर टिके रहना कितना जरूरी है, चाहे नतीजा कुछ भी हो।
उनका लक्ष्य विद्रोह नहीं था, बल्कि अपनी आत्मा के प्रति ईमानदार रहना था।
सही, और ये आज भी कितना प्रासंगिक है, असहमति का अधिकार के लिए, विवेक की स्वतंत्रता के लिए।
चौथा, सुकरात का वो डांस वाला मिशन, वो गॉडफ्लाई वाली भूमिका।
समाज को ऐसी आवाजों की जरूरत होती है जो उसे झिंझोड़ती रहें, उसे सुस्त न होने दें।
ये भूमिका आसान नहीं होती, लोग नाराज होते हैं, पर सवाल ये है कि क्या एक स्वस्थ समाज ऐसी आलोचनात्मक आवाजों को सुनता है, उन्हें प्रोत्साहित करता है या उन्हें दबा देता है।
और सुकरात का लक्ष्य सिर्फ नुक्ताचीनी करना नहीं था, उनका लक्ष्य था समाज को नैतिक रूप से बेहतर बनाना।
और पांचवा, नैतिक अखंडता का मूल्य।
हाँ, सुकरात के लिए सच्चाई और अपने सिद्धांतों पर टिके रहना जान से भी ज्यादा कीमती था। यह हमें याद दिलाता है कि असली नुकसान बाहरी चीजों से नहीं होता, गरीबी, बेइज्जती, यहां तक कि मौत से भी नहीं, असली नुकसान होता है अपने चरित्र को गिरा देने से।
यही उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य था, सदाचारी बने रहना।
और इस किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो सच में सदियों बाद भी गूंजती हैं।
हाँ, जैसे सबसे मशहूर तो वही है, बिना परखा जीवन जीने योग्य नहीं है।
ये सिर्फ जिंदा रहने की बात नहीं, ये सार्थक रूप से जीने की बात है। आत्मचिंतन ही इंसान को सही मायने में इंसान बनाता है।
और दूसरा वो जो थोड़ा विरोधाभासी लगता है, मैं इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता।
ये अहंकार पर विनम्रता की जीत है। अपनी सीमाओं को जानना ही सीखने और आगे बढ़ने का पहला कदम है, एक तरह की बौद्धिक आजादी।
तीसरा, मैं वो डांस हूं जिसे ईश्वर ने राज्य से जोड़ा है।
ये दिखाता है कि कैसे एक आलोचक या विचारक की भूमिका समाज के लिए भले ही थोड़ी चुभने वाली हो, पर जरूरी है। ये सुकरात के अपने मिशन और लक्ष्य की सीधी बात है।
और चौथा, जो मुझे बहुत हिम्मत देता है, एक अच्छे इंसान का न तो जीवन में न ही मृत्यु के बाद कोई बुरा हो सकता है।
ये सदाचार की ताकत में गहरा विश्वास दिखाता है कि असली सुरक्षा भारी चीजों में नहीं, हमारे अपने चरित्र में है।
तो सवाल ये है कि हम इन महान विचारों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाएं? क्या ये सिर्फ किताबी बातें रह जाती हैं?
नहीं, मुझे नहीं लगता। व्यक्तिगत स्तर पर हम अपने विश्वासों पर क्यों पूछना शुरू कर सकते हैं?
हाँ, क्या हम कोई बात इसलिए मान रहे हैं क्योंकि बचपन से सुनते आए हैं, या समाज कहता है, या हमने वाकई उस पर सोचा है?
किसी बहस में सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि सामने वाले का नजरिया समझने के लिए हिस्सा लेना, ये अपनी बौद्धिक भूमिका को निभाने जैसा है।
और काम की जगह पर, ऑफिस में,
मीटिंग्स में या अपनी टीम में सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने के बजाय अगर हमें लगता है कि कोई बेहतर तरीका है या कोई नैतिक चिंता है, तो सम्मान के साथ अपनी बात रखना।
ये वही डांस वाली भूमिका है जिसका मकसद अंत में बेहतरी लाना है, सिर्फ विरोध करना नहीं।
शिक्षा में भी इसकी बहुत जगह है।
हाँ, छात्रों को और हाँ खुद को भी सिर्फ जानकारी रटने के बजाय सवाल पूछने के लिए बढ़ावा देना। ये मानना कि मुझे नहीं पता शर्म की बात नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है।
और एक नागरिक के तौर पर हमारी क्या भूमिका हो सकती है?
नेताओं, मीडिया या किसी भी अथॉरिटी की बातों पर आंख मूंद कर यकीन न करें, तर्क और सबूतों के आधार पर अपनी राय बनाएं।
और उन लोगों से भी बात करें जिनके विचार हमसे बिल्कुल अलग हैं। यही एक परखे हुए समाज की निशानी है जहां हर नागरिक अपनी भूमिका निभाता है।
तो इस पूरी बातचीत से आपके लिए सबसे यादगार या शायद चौंकाने वाली बात क्या रही?
मेरे लिए तो शायद सुकरात का वो नैतिक साहस है, ये जानते हुए कि मौत सामने खड़ी है, फिर भी अपने सिद्धांतों से जरा भी न डिगना। ये सोचना कि आज के जमाने में हम किन चीजों के लिए इतना बड़ा स्टैंड लेने को तैयार होंगे, ये अपनी भूमिका को कितने ऊंचे दर्जे पर देखना है।
और मेरे लिए वो बौद्धिक विनम्रता वाला पहलू, मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। आज की इस दुनिया में जहां जानकारी का सैलाब है और हर कोई सब कुछ जानने का दावा करता है, ये विचार एक ताजी हवा के झोंके की तरह है।
हाँ, ये याद दिलाता है कि सीखने की गुंजाइश हमेशा है।
तो कुल मिलाकर प्लेटो की अपोलॉजी हमें एक परखे हुए जीवन जीने, बौद्धिक विनम्रता अपनाने और सबसे बढ़कर नैतिक अखंडता को सबसे ऊपर रखने की प्रेरणा देती है।
ये दिखाती है कि दर्शन सिर्फ पढ़ना या बातें करना नहीं है, बल्कि जीना है। ये अपनी भूमिका और अपने लक्ष्य को समझने और उसे निभाने की कला है।
सुकरात ने अपने सिद्धांतों के लिए जान दे दी। ये सोचने वाली बात है कि आज के दौर में वो कौन से सिद्धांत या मूल्य हैं जिनके लिए वास्तव में आवाज उठाना या खड़े होना जरूरी है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।